想要聊一些人。
Vasudevaya.
सत्यम् धर्म चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये दर्शत्राय श्रवत्तेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुखापान शालिने वनमान्ये महाभाव स्वरूपास्त्वम् कृष्णप्रिय वरीयसे प्रेमवक्ति प्रदे देवी राधिका त्वं नमोऽस्तु ते श्रीमद् अनंतश्रेष्ठ लोक की आज्ञा से कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 42वें अध्याय में महाप्रभु भक्ति के 5 अंगों के बारे में विशेष करके बता रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं साधु संगणाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धया सेवन सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग कृष्ण प्रेम जन्माय यही पंचे प्रसंग। महाप्रभु कहते हैं यहां पर साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमूर्ति श्रद्धा सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचांग कृष्ण प्रेम जन्माय यही पंचेर अल्प संग। रूप गोस्वामी पाद को इस अपराधों के बारे में बताने के पश्चात महाप्रभु यहां पर बताते हैं कि जब व्यक्ति भगवत भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो सबसे महत्वपूर्ण 5 अंग है कि जिसको या जिन्हें उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे पहला अंग हमें बताते हैं कि साधु संग साधुओं का संग। क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि अगर उनकी कथा को सुनना है या उनके गुणों का वर्णन सुनना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि साधुओं के संग में सुनना है। श्रीमद् भागवत के 3rd स्कंध में जहां पे कपिल ने अपनी माता देवावती को दिव्य भक्ति के बारे में बताया है वहां पर अपने वो माता को कहते हैं कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन तीर्थ करण रथाय रसायन कथा तत्षोषणा अश्व अपवर्ग वर्धमणि श्रद्धा रतिर भक्तिर अंतरिश कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो सताम यानी साधु जो सत्य से कभी विचलित नहीं होते वह सदा उनके संग में मेरी कथा का मेरी गुणों का मेरी लीलाओं का वर्णन सुनो कहते हैं। हालांकि स्वयं बता रहे अपनी माताओं की मुझसे भी सुनने से अच्छा है मेरे भक्तों से या मेरे भक्तों के मुख से मेरे गुरु का वर्णन सुनो, उससे क्या होता है। जैसे रसायन शास्त्र में एक रसायन उपयोग में लाते हैं कोई क्रिया जल्दी करवाने के लिए, जिसे प्रेरक या कैटलिस्ट कहा जाता है, वही वो द्रव उपयोग में लाने के पश्चात वो जो क्रिया है जल्द से जल्द या शीघ्रता से शीघ्र हो जाती है। तो भगवत भक्ति भी अगर हमें तुरंत प्राप्त होनी है या उसे जल्द से जल्द हमें प्राप्त करना है तो साधुओं का संग भवंती ऋतकर्ण रसायन कथा। आयुर्वेद में जब व्यक्ति बहुत ही चर्चा हो जाता है और बाह्य रूप से उसे उसके ऊपर कोई दवाई असर नहीं करती तब उसे रसायन चिकित्सा दी जाती है। रसायन चिकित्सा ने उन औषधों को द्रव युक्त में अर्क बना के पिलाया जाता है और फिर उस ग्रहण करने के पश्चात उस रोगी के ऊपर जल्दी से उसका प्रभाव होता है। तो उसी प्रकार से जब भगवत कथा भगवत भक्तों के मुख से सुनी जाती है तो वह रसायन का कार्य करती है और उसका परिणाम क्या होता है, तत्जोषधा अश्व, अश्व यानी तुरंत, तुरंत ही हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और व्यक्ति अपवर्ग वर्तमनी अपवर्ग की तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष और उसके मन में फिर भगवान के प्रति अटल श्रद्धा रति और अंत में भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इन भक्ति के पंचांगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा गया है वो है साधु संग। साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र है, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्ध, क्योंकि साधु के संग केवल लव मात्र प्राप्त होने से इतना परिणाम क्यों होता है, क्योंकि भगवान स्वयं बताते कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति। जहां विचार साधु करता है सोचो भगवान वहीं पर है, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मुझसे मेरे सिवा दूसरा कुछ जानते ही नहीं है। साधो हृदय मह्यम, साधुनाम हृदय त्वम अहम, मद अन्य ते न जानाति नाहम तेभ्यो मना। साधु मेरे हृदय में वास करते हैं, मैं उनके हृदय में वास करता हूं, वो मेरे सिवा अन्य किसी चीज को जानते नहीं और मैं उनके सिवा किसी अन्य चीज को जानता नहीं। तो भगवान इतने आसक्त है साधुओं से और ऐसे अगर साधु का हम संग करते हैं तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी और इसलिए महाप्रभु ने कहा है कि साधु संग करो। श्रीमद् भागवत में कई जगह पे इसका वर्णन आया है कि लव मात्र साधु संगों से कई जीवों का उद्धार हुआ है। जैसे एक आख्यान है जड़ भरत जी का, जब जड़ भरत जी रघुगण को मिले रघुगण ने तो बहुत उनकी भर्त्सना की थी, लेकिन जड़ भरत जी के लव मात्र संग से वो मुक्त हो गए, क्योंकि जड़ भरत स्वयं बता रहे हैं कि रघुगण तपसा नयाति तपसा नयाति न चेजा निर्वाण गृहत्व न छंदसा नैव चलाग्नि सूर्य बिना पाद। जड़ भरत कहते हैं कि हे रघुगण, ना तो तुम तपस्या के द्वारा न यज्ञ के द्वारा न मोक्ष के द्वारा न वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा या कड़ी से कड़ी तपस्या के द्वारा तुम इस आत्म तत्व को या भगवत तत्व को जान सकते हो, बल्कि केवल एक ही चीज से जान सकते हो, उसे आसान होगा तुम्हें और वो है महत् पदम पाद रजो अभिषेकम। महत् पद यानी जो साधु है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, ऐसे व्यक्तियों का अगर तुम आश्रय लोगे उनके चरणों की धूलि अपने मस्तक पे धारण करोगे तो निश्चित रूप से इस आत्म तत्व को और साथ ही साथ भगवत तत्व को जान पाओगे। तो इतना महत्वपूर्ण है साधु संघ, और इसलिए जब महाप्रभु को जब जगन्नाथपुर से सारे भक्त अपने अपने गांव जा रहे होते हैं रथ यात्रा के पश्चात, तो कुलीन ग्राम के कुछ वैष्णव रहते हैं और महाप्रभु से प्रश्न करते हैं कि महाप्रभु कृपया हमें बताइए कि हम अपने भक्तिमय जीवन में कैसे आगे बढ़े। तो उस समय फिर महाप्रभु कहते हैं कि भक्त पद धुलिया भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष यही तीन साधन यही तीन सेवा ये कृष्ण प्रेमा है पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया कही ताते बार बार कही सुन भक्त गण विश्वास करिया कर ये तीन सेवा भक्त पद धुली भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष यही तीन महाबल तीन साधन बल। हमारे साधना के आवश्यक बहुत सारे अंग बताने के पश्चात महाप्रभु यहां पर बताते कि ये भी महत्वपूर्ण है। भक्तों का सम्मान करना, भक्तों का आश्रय ग्रहण करना, उनका संग करना। और भारतवर्ष में तो आम लोगों को भी मालूम है कि भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए करना, लेकिन हर एक का संग करने की पद्धति अलग है। जैसे एक व्यापारी था और अपने युवा बालक को उसने कहा कि जाओ शहर में कथा चल रही है तो जाके कथा में श्रवण करो। तो बच्चा 7 दिन गया, 7 दिन अच्छी तरह से कथा सुना, 8वें दिन फिर दुकान में आया और दुकान में काम का शुरू रहा। कपड़े की दुकान थी तो एक ग्राहक आया और उसने पूछा कि भाई साहब ये कपड़ा कितने का है। तो बच्चे ने बोला ये 80 रुपए मीटर का है। तो पिताजी ने सुनते ही उनकी आंखें लाल हो गई, बोले ये क्या कर रहे, बोले तो 280 का है, 80 रुपए का थोड़ी है। तो बच्चा पिता की तरफ देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने पता कि क्या है, तो आंखों से बाप ने बोला कि चुप बैठो अंदर चले जाओ। और फिर बाप ने कैसे भी करके पटा लिया वो ग्राहक को और 280 का जो 250 में बेच दिया कपड़ा। और बाद में बोला नाला है किधर। अच्छा बोला पिताजी क्या हुआ, सच उम्र है और उस आदमी से आप छूट क्यों। बोले बोले हम व्यापार कर रहे हैं। अच्छा बोलते कि लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए ना। बोले कहां से सुना तुमने। बोले बापू पिछले 7 दिन से साधु वही बता रहे थे कि कभी भी असत्य व्यवहार नहीं करना है। तो बोले गधे मैंने तुमको साधु का संग करने के लिए बोला था, खुद का रंग नहीं बदलने के लिए बोला। हम साधुओं का संग करना चाहते हैं लेकिन अपना रंग नहीं छोड़ना चाहते। अगर फिर रंग नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो साधु संघ का फायदा भी क्या होगा। साधु संघ यानी उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में स्वीकार। बल्कि इस भौतिक जगत पर रहने के कारण हमें इतने अनर्थ उत्पन्न होते हैं कि वो साधु संघ में भी जहां पे सत्य ही प्रदर्शित होता है वहां पे भी हम असत्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं। साधुओं में दोष देखने की प्रवृत्ति हमारी रहती है, कुछ ना कुछ करके हम दोष देखते हैं और इसीलिए कई जन्मों तक भी साधु संघ किया फिर भी हमें उसका परिणाम नहीं प्राप्त होता। इसलिए महाप्रभु बताते हैं कि वैष्णव की कभी निंदा नहीं करनी। कई बार हम साधुओं के संग में आते हैं और एक साधु के सामने दूसरे साधु की बुराई या भलाई करना शुरू कर देते हैं, इसका कोई अधिकार नहीं है हमें करने का। कई जन्मों तक भी अगर हम भगवत नाम लेते रहे और भगवान के भक्तों के प्रति अगर अपराध करते रहे, उनकी निंदा करती रहे, तो निश्चित रूप से हमारा नाश हो जाएगा। क्योंकि इस भौतिक जगत में साधुओं का संग ही इन मध्य जीवात्माओं के लिए सबसे बड़ा भगवान ने दिया हुआ वरदान है। इसी की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में होती है। वहां पे शिवजी अनारद जी बताते हैं कि तुल्याम लवेनापि न स्वर्गम अपुनर्भवम्, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किम उताशिषम्। तुल्याम लवेनापि, ये स्वर्ग अपवर्ग इनकी तुलना हम लवक मात्र भी नहीं कर सकते। किसके साथ? साधु के समूह के साथ। क्योंकि साधु कौन है? भगवत संगी संगस्य, वो भगवान उनका संगी है। क्योंकि भगवान स्वयं बताते कि मैं उस व्यक्ति के साथ ही रहता हूं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि गोविंद कहे न मोर वैष्णव परान। भगवान गोविंद में बोलते हैं कि वैष्णव तो मेरे प्राण है। तो ऐसे प्राण के प्रति अगर हम कुछ अपराध करेंगे, कुछ निंदा करेंगे, तो भक्ति में प्रगति कर पाएंगे, प्रेम प्राप्त कर पाएंगे? बहुत कठिन। और इसलिए कहा जाता है कि इन भक्तों के प्रति कभी हमें अपराध नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती महाराज चित्रकेतु को शाप दे देती है, क्योंकि वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान मुझा, वैष्णव की जो क्रिया है कार्यकलाप है हम अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते और कभी जानने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार कैलाश पे शिव जी अपनी पत्नी को अपनी भाई गोद में लेकर बैठे हैं और सामने बड़े बड़े योगी त्यागी हठी योगी सारे बैठे हैं और उनको शिव जी वैराग्यों के ऊपर प्रवचन दे रहे, और उसी समय कई विद्यार्थियों लोगों के साथ चित्रकेतु अपने विमान में वहां से जा रहे थे और उन्होंने शिव जी की तरफ देखा और वो हंसने लगे और वो देखकर पार्वती को गुस्सा आया, क्रोध है, मेरे पति पे हंस रहे हो, तुम्हारी आसुरी बुद्धि हो गई है, तुम आसुर बन जाओ, राक्षस बन जाओ। शिव जी ने रोका, क्या कर रही हो तुम, किसको शाप दे रही हो तुम, ये व्यक्ति कौन है? शिव जी बताते हैं कि नारायण हमारा सर्वे न प्रदर्शन विद्यति स्वर्ग अपिवर्ग शो अपितुल्यान प्रदर्शन। अरे नारायण परा है, भगवान श्री नारायण के चिंतन में गढ़ा हुआ यह जीवात्मा है, ये वो महान भक्त है जो भगवत नाम के स्मरण के सिवा रह नहीं सकता, और उसको चाहे तुम नरक में रखो, स्वर्ग में रखो या भगवत धाम में रखो, उसके लिए सारी जगह समान है। इसके प्रति अपराध करके क्या फायदा मिलेगा? चाहे तो वो तुम्हें शाप ले सकता है लेकिन वो नहीं करने वाला क्योंकि वो वैष्णव है। हालांकि चित्र के तुम्हारे उल्टा शाप दे सकते थे लेकिन उन्होंने ठीक है मतलब भगवान की इच्छा करते वो उन्होंने स्वीकार लिया और आगे जाके वही वृत्रासुर बने। लेकिन शिवजी ने वहां पे बता दिया कि ऐसे वैष्णवों के प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। पार्वती को कहने की कम से कम पूछना तो चाहिए था कि वो क्यों हंसे, फिर पूछते कि आप क्यों हंसे, चित्र के तो बोलते हैं मैं ये देखकर हंसा कि केवल शिवजी ही व्यक्ति है जो साक्षात भवानी को अपनी गोद में बैठकर वैराग्य के ऊपर बोल सकते हैं, अन्यथा किसकी मजाल है कि वो वैराग्य के ऊपर आपके सानिध्य में बोल सके। क्योंकि इस भौतिक जगत में ये जो पूरा माया बाजार है ये सब किससे आता है? भवानी से आता है, पार्वती से आता है, तो ऐसे स्रोत को गोद में बिठाकर व्यक्ति वैराग्य के ऊपर कैसे बोल सकता है? लेकिन शिवजी परम वैष्णव होने के कारण वो बोल सकते हैं। और यही सोचकर मैं हंस पड़ा, बोले इसमें आना कोई अपराध नहीं कर रहा था शिव जी के प्रति, बल्कि भाई आई वॉज अप्रिशिएट मैं उसको मैं प्रशंसा कर रहा था उसकी। महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी वैष्णव के आचरण को अपनी बुद्धि के द्वारा कभी जज नहीं करना, कभी उसके बारे में अपना तर्क को तर्क नहीं देना। अगर देंगे तो कहा जाता है कि निश्चित रूप से हमारा ही नाश होने वाला है, क्योंकि महाप्रभु बताते हैं यदि वैष्णव अपराध है मुख्य मति माता उपाड़ीगा छिड़े सुखी छाए छंडी जाए पाता। ये जो भक्ति लता है जिसे हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं वो इस वैष्णव अपराध के कारण नष्ट हो जाती है, बाकी के अपराधों से ये कमजोर हो जाती है, इसकी पत्तियां गल जाती है, फिर भी आप उसको नर्चर कर सकते हो बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर कोई वैष्णव अपराध कर लेता है तो महाप्रभु बताते हैं कि ये हाथी माता अपराध है, यानी मत्त हाथी जब किसी बगीचे में घुस जाता है तो पूरा तहस नहस कर देता है। तो उसी प्रति किसी वैष्णव के प्रति की गई निंदा या किया गया अपराध हमारे भक्ति लता को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि इस अपराध से बचो, न मन से न बुद्धि से न वाणी से न शरीर से कभी भी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए या उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मना पतन्ति पितृभिः श्राद्धे महागौरव स्थिते, कि जो भी व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति कहते हैं निंदा कुर्वन्ति ये मूढ़ा, जो मूर्ख व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है पतन्ति उसका पतन हो जाता है, कहां पे? केवल उसका नहीं बल्कि पितरों भी, अपने सारे पितरों के लेकर वो महागौरव नरक में पड़ जाता है। और इसी एक अपराध के कारण भक्ति में हमें रुचि नहीं लगती है। नाम जब कहा जाता है कि भगवान का नाम मधुरम मधुरे भी सबसे मधुर है, फिर भी हमें उसमें रुचि नहीं आती, क्योंकि ये हमारे जिह्वा पे एक ऐसा स्तर निर्माण कर देता है कि जिसके द्वारा इस हरिनाम की सुधा का पान नहीं कर पाते। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, सबका उद्धार करने के लिए आए, लेकिन अगर कोई वैष्णव के चरण में अपराध कर देता है तो महाप्रभु भी उसका उद्धार नहीं करते। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि यद्यपि ते उद्धारिन है चैतन्य गोसाय वैष्णव निंदु के रे कुंभी पाके दिला ठाले, यद्यपि चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने सारे लोगों का उद्धार किया लेकिन जो वैष्णव के निंदक है उनको उन्होंने कहा जगह दी कुंभी पाके दिला ठाए, कुंभी पाक नरक में भेज दे। इसलिए किसी वैष्णव के प्रति अगर हम अपराध करते हैं या उनके प्रति असम्मान या अनादर करते हैं निश्चित रूप से ये हमारे भक्ति में जीवन के लिए बहुत बड़ी बाधा है। सवारे गौर चंद्र करीब उद्धार व्यतिरेक वैष्णव निंदुक दुराचार, सबका में उद्धार कर सकते हैं लेकिन वैष्णव की निंदा करने वाला जो दुराचारी है उसके लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, क्योंकि महाप्रभु आगे जाके कहते हैं कि अधिकारी वैष्णव ना मुझे व्यवहार जे जने निंदय तारण वाही का निस्तार। कोई महान वैष्णव अगर वो किसी भी प्रकार से व्यवहार करता है तो उसकी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम उस कार्यकलाप को नहीं जान सकते, अगर कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाएगा। क्योंकि वैष्णव के कार्यकलाप जानना बहुत कठिन है, कोई दूसरा वैष्णव भी उनके बारे में नहीं सोच सकता।
चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि एक बार महाप्रभु जोर जोर से चिल्ला उठते हैं, ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा करके, और अपने भक्तों को बोलते कि जाओ और देखो कि पुंडरिक बिरयानी भी आया है। तो सारे अचंभित होते कि कौन है। तो उसी समय मुकुंद दत्त और गदाधर पंडित ये दोनों पुंडरिक विद्यानी जी को मिलने जाते हैं, और जाते समय मुकुंद दत्त उनको बताते हैं कि पुंडरिक विद्यानी जी बहुत बड़े महाभागवत हैं और इसलिए महाप्रभु उनका स्मरण कर रहे थे, क्योंकि कृष्ण लीला में वही वृषभानु जो राधा रानी के पिता है वही है। तो वे जाते हैं देखने के लिए। तो जब पुंडरिक विद्यानिधि जी के घर पे पहुंचता है तो देखते हैं कि वहां पे एक बड़े झूले में एक व्यक्ति बैठा है, उस झूले के दोनों बाजू में आईने हैं, और उस झूले पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसने बहुत ही मूल्यवान रेशमी वस्त्र पहने हुए, शरीर पूरे नाना अलंकारों से आभूषणों से विभूषित है, तांबूल खा रहे हैं, और बीच बीच में झूला लेते समय आईने में देख के अपने बाल भी बना रहे हैं, मूछे ये कर रहे हैं, और बहुत शानो शौकत के साथ झूल रहे हैं झूले में। वो देखने के पश्चात गदाधर पंडित जो कि बचपन से ही वैरागी थे, उनके मन में संदेह आया, ये वैष्णव है, इसको वैष्णव कहा जाता है, और उनके मन की बात मुकुंद ने तुरंत जान ली। और मुकुंद ने उसी समय एक बहुत ही सुंदर श्लोक भागवत में से गाया, अहो अकीयम स्तनकाल कूटम जिघांस याय पाप सार लेभे गतिम धातृचितान अनन्यम कम वा दयालुम शरण प्रपद्ये। जैसे ही ये श्लोक उन्होंने उच्च स्वर में गाया और पुंडरिक विद्यानिधि जी ने सुना, वे धड़ से उस झूले से नीचे गिर पड़े, अस्ताव्यस्त यहां वहां पैर हाथ फेंकने लगे, शरीर पूरा कंपायमान होने लगा, केश उनके बिखर गए, शरीर से पसीना छूटने लगा, मुंह में से लार बहने लगी, वाणी गदगद हो गई, कंठरुद्ध हो गया उनका। और ये सब दृश्य देखने के पश्चात गदाधर पंडित जी को समझ में आया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान की महत्ता सुनने के पश्चात केवल भगवान का अनन्य भक्त ही इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है, इस प्रकार से उसका आचरण हो सकता है। यानी अगर भगवत प्रेम से इतने ओतप्रोत थे कि केवल एक शब्द ही भगवान के बारे में सुनने के पश्चात उनमें यह अष्ट विकार उत्पन्न हो, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो निश्चित रूप से उनके प्रति अपराध करेगा उनका और अहिंसन देकर, लेकिन केवल एक भक्ति है जो भक्तों अच्छी तरह से जान सकता है। कभी कभी भगवान भी बाकी भक्तों को अच्छा दिल कर देते कि जिसके फिर आप जान नहीं पाते फिर उनकी महत्ता। इसलिए बाबा जी कहा करते थे वृंदावन के एक भजन सिद्ध बाबा जी थे, उन्हें कहा कि अगर कोई वैष्णव शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण भी कर रहा हो तो उसमें आप दोष मत देखिए, क्योंकि हमारी बुद्धि के द्वारा उस कार्य को हम नहीं जान सकते, इसलिए उसको उसका त्याग कीजिए। मन में सोच लिए कि हम अज्ञानी हैं और इस कार्य को नहीं जान सकते करके उसको निग्लेक्ट कर दीजिए और वहां से निकल पड़े, और अगर सोच के अपने अंदर आलोचना करने लगे वहां पे और अपने मन के अनुसार कुछ बताने लगे तो निश्चित रूप से अपराध कर पड़े, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप को सबसे हीन नहीं मानता है तब तक भगवत भक्ति नहीं कर सकता। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर उनके एक गीत में बताता है,
कि अगर किसी को सदैव भगवान का कीर्तन करना है तो क्या करना चाहिए। वे कहते हैं कि चार गुणों को अपनाना चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दैन्य दया मन प्रतिशाली चारि गुणी गुणी होय करह कीर्तन। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण कीर्तने जलि मानस पोहा। अगर कृष्ण कीर्तन करने की मन की इच्छा है तो क्या करना चाहिए? दैन्य दया अन्य मान और प्रतिष्ठा विवर्जन, ये चार गुणों को अपनाना चाहिए। चार ही गुणी गुणी हो या कर कीर्तन, इन चार गुणों से अगर युक्त होंगे गुणी बनोगे तभी भगवान का सदैव कीर्तन कर सकते। अगर हमारे पास निंदा की प्रवृत्ति है तो क्या हम अपने आप को दीन मान सकते हैं? किसी दूसरे से अपने आप को हम क्षुद्र मान सकते हैं? निंदा की प्रवृत्ति कब आती है? जब हम अपने आप को दूसरे से थोड़ा बड़ा चढ़ा मानते हैं, थोड़ा प्रगत मानते हैं, तो ऐसी अवस्था में नहीं कर सकते हम भगवान का जप, भगवान का नाम नहीं ले सकते। अगर नाम ही लेना है भगवान का तो यह सबसे पहला गुण है कि दैन्य यानी दीनता हमारे पास होनी चाहिए, अपने आप को सारे जीवों से शुद्र समझना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत के जो रचयिता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वे कहते हैं कि अगर मेरा कोई नाम भी सुन लेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, मैं तो जगाई और मधाई से भी पापिष्ट हूं, पापी हूं और विषा के कीटक से भी शूद्र हूं। तो ये होती है वैष्णव की भावना, वो अपने आप को ये समझता है। और बाह्य जीवन में क्या होता है, लोग अपने आप को सबका स्वामी समझते हैं। भगवत प्राप्ति की विधि है दास दासानुदास, और भगवत भक्ति विहीन होने की विधि क्या है, बॉस बॉसोन बॉस। और उसी के कारण यहां पर नाते खा रहे हम माया के, और बड़े भक्तों की यही पहचान रहती है कि वो अपनी पहचान कैसे करवा के देते हैं। जैसे महाराज कुलशेखर जो दक्षिण भारत के 12 अलवारों में से एक है, अलवार शब्द का अर्थ है कि जो भगवत प्रेम से आप्लवित है, जो भगवत प्रेम की बाढ़ में बह चुके हैं, तो वो व्यक्ति भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, मज्जन्मना फलमिद मदपेटव भारे मत प्रार्थनीयम अनुग्रह एषयेव त्वद् भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य नृत्यस्य भृत्य स्मरणम लोकनाथ। ये मुकुंद मार्ग से श्लोक जहां पर हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, मज्जन्मना फलमिदम मदपेटव भारे, मधु और कैटर का भार ग्रहण करने वाले, अगर तुम चाहते हो कि मेरा जन्म सार्थक हो तो मुझे क्या फल प्रदान करो, स्मर मम लोकनाथ, मेरा स्मरण कैसे करो, त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्यस्य भृत्य, तुम्हारे दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास सावाक्य कर। सामान्य कार्यकर्षण देखते लोग होते हमें भक्त है, भगवान बोलते जो अपने आप को मेरा भक्त कहता है ना वो भाषणी है, वो हो ही नहीं सकता मेरा भक्त। लेकिन जो कहता है कि मैं भगवान के भक्तों का दास हूं, भगवान पहले उसको उठा लेते। और यही हमारी गौड़ीय सिद्धांत की विधि है भगवत प्राप्ति की। महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं है, वे जब स्वयं आए तो उन्होंने क्या विधि दी, उन्होंने यही विधि दी कि दास कि मैं गोपियों के जो करतूत है उनके सेवकों के सेवकों का सेवक हूं, यह उन्होंने अपनी पहचान करा। तो जब तक दीनता हमारे पास नहीं है, दैन्य हमारे पास नहीं है, तब तक हरिनाम हमारे लिए कोसों दूर है। और इतने सालों साल अगर हम रटते भी रहे तो केवल मुख से वो अक्षर निकलेगा, भगवत नाम नहीं निकलेगा। क्योंकि शास्त्र में वचन है कि कोई एक बार की भगवत, एक बार भी भगवत का भगवान का नाम ले लेता है तो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हरति अशेष पापानी राम गिरिणाम अपि, पर्वतों के समान हमने अगर पाप इकट्ठा भी किए होंगे और केवल एक भगवान का नाम ले लेंगे, शुद्ध अपराध विहित, अपराध रहित, तो निश्चित रूप से इन सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर ऐसा नाम श्रवण करना तो आवश्यक साधु कर सकते। कलियुग की विधि है संकीर्तन, इकट्ठा आके हमें भगवत नाम का कीर्तन करना, क्योंकि हमें मालूम है हम इतने शुद्ध नहीं है, हम कितना भी नाम रटे तो किसी का कुछ होने वाला नहीं है। अगर कई भक्तों के संग में आके करेंगे तो किसी एक शुद्ध भक्त ने बोला हुआ नाम सुनकर हमें शुद्धता है। इसलिए संग करो शुद्ध सत्यम कहा गया कि कलयुग में शुद्ध में शक्ति है, इसलिए इकट्ठा आके भगवत नाम और भगवत कीर्तन करें। और जो बुद्धिमान है वही इस विधि को स्वीकार सकता है, यह सुमेध सा वही व्यक्ति इस यज्ञ को अपना सकता है जो बुद्धिमान है। तो सही में है, अगर भगवत भक्ति में हमें प्रचार करना है, भगवान के चरणों का अगर आश्रय धारण करना है तो निश्चित रूप से हमें इन भगवान के भक्तों का आश्रय ग्रहण करना है। क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि साधु निंदा सुनीले शत्रु की भय नाश, जन्म जन्म अदब पात वेदे यही कह। कि साधु की निंदा अगर सुनते हैं तो हमारी सारे सुकृतियां नष्ट हो जाती है और जन्मों जन्मों तक हमारा अदब बदल हो जाता है। तो फिर साधु कौन है? गेरा में कपड़े धारण किया हुआ विरक्त वैरागी ऐसे व्यक्ति को साधु कहा गया? वैसे तो है वो, तो वैराग्य का द्योतक है, वो तो बाहर ही परिवेश है। लेकिन भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि नेयम नित्य संन्यासी और दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधार्थम उच्यते। नेयम नित्य संन्यासी, उसको संन्यासी समझो या उसको साधु समझो, यो न द्वेष न कांक्षति, जो किसी का द्वेष नहीं करता है या जिसके मन में कोई इच्छा नहीं होती। और फिर वो कोई क्यों ना हो, ये गृहस्थ संन्यासी बात करते हैं तो बाहरी परिवेश है और भगवान तो उस अंतरात्मा को देखते हैं कि जो शुद्ध होता अंश है। और हम महाप्रभु की लीला में भी देखते हैं कि महाप्रभु के जितने भी परिवार है उसमें 180% तो सारे गृहस्थ ही है, एक तो सन्यासी है। तो वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए, बाह्य वस्त्र तो ठीक है लेकिन अंतकरण वैराग्य होना चाहिए। चैतन्य भागवत में कहा गया है कि महाप्रभु भक्तों का न वैराग्य प्रदान गौरव प्रवाह, और आपको अगर गौरव गौरांग महाप्रभु को प्रिय बनना है, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण करना है तो वैराग्य आवश्यक। और हम देखते हैं कि महाप्रभु की लीला में कितने सारे भक्त है कि जिन्होंने अपना वैराग्य प्रकट किया है अपने अपने आश्रमों में रहने के पश्चात। तो साधु केवल गिरवे वस्त्र धारण करने वाले कोई नहीं, बल्कि साधु उसको कहते हैं जो उन गुणों से युक्त है। बारह महाजनों में भी हम देखते हैं कि कितने वैराग्य लोग हैं उसमें, वैराग्य वेश धारण किए हुए कितने लोग हैं, कौन कौन है बारह महाजन? शंभु कुमार कपिलो प्रह्लाद जनको भीष्म बलिर भैया सखीव। आप बोलिए इसमें से कितने वैराग्य वेश धारण किए लोग इन बारह में? स्वयं को यानी ब्रह्मा, नारद, शंभु, इनमें कितने वैराग्य हैं, वैराग्य वेश धारण किए हुए? नारद ब्रह्मा जी को ग्रस्त है, शंभु तो स्वयं इस धरती के आद्य ग्रहस्थ है, कुमार ये वैराग्य, कपिल ये वैराग्य, मनु वैराग्य, वैराग्य एक धर्म की ग्रस्त है। लेकिन इनको हम महाजन कहते हैं क्योंकि उनकी चेतना जो थी वो भगवत भावना थी, इसीलिए ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करना या निंदा करना ये निश्चित रूप से हमारी भक्ति लता का नाश करने वाला। महाप्रभु ने जो हमें शिक्षाएं दी है उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वे उन्होंने शिक्षा शास्त्र में, और तीसरे श्लोक में उन्होंने क्या कहा है उसके याद है सबको? एक साथ कहे प्रणाद वे सुनी चेना करो ही बस कृष्णना अमानिन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। भगवान हरि का नाम हम सदा कब ले सकते हैं? तृणादिक हीन दीन, जब तृण से भी अधिक हीन अपने आप को हम समझे तृणाद की नीचे, और तरोरी व सहिष्णु पेट से भी अधिक सहनशील। जैसे तुकाराम महाराज का एक उदाहरण आता है कि वैष्णव किसे कहा जाता है? केवल किला कंठी धारण करने से कोई वैष्णव नहीं बनता है। तो वैष्णव भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर कहा करते थे कि वैष्णव के लिए दूसरा सरल दूसरा समानार्थी शब्द है सरल, जिसका हृदय सरल है, जिसमें कुटिलता नहीं है, और वो सहज। तो जब तुकाराम महाराज देहू में भगवत संगीतन का प्रचार कर रहे थे, भगवत नाम संगीतन का प्रचार, तो धीरे धीरे गांव के लोग उनके प्रति आसक्त होने लगे, उनकी कथा में ज्यादा से ज्यादा जाने लगे। उसी समय उनके पड़ोस में एक ब्राह्मण रहता था, वो भी पंडित था, लेकिन बहुत ही द्वेषी व्यक्ति था। उसके भी अपने कुछ शिष्य थे जो उसके कीर्तन में आया करते थे और सुना करते थे, लेकिन जब तुकाराम महाराज के मुख कमल से लोग भगवत भक्ति के बारे में सुनते तो ज्यादा प्रेरित और आकर्षित हो जाते थे, तो इसके भी कई शिष्य उनकी कथा में जाने लगे, उनकी कथा में अपना योगदान देने लगे। तो ये ब्राह्मण को रहा नहीं गया, उसने अपने देश की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया, और एक दिन रात्रि में कांटे की लकड़ी लेकर वो छुपा रहा, और जब सारे लोग अपने अपने घर चले गए कथा कीर्तन के पश्चात, तो कमराज अपने घर आ रहे थे वापस, तो अचानक से पीछे से आया और उस कांटे के लकड़ी से उसने कमराज को पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा होगा कि बेचारे लहू लुहान होकर बेहोश होते गिर गए, और इसने उसने अपनी पूरी भड़ास निकाल लिया उनके ऊपर और उसके पश्चात वो चला गया वहीं पे वो रखेगा। कुछ समय के पश्चात तुकाराम महाराज उठ गए, उसी बुरी हालत में कैसे भी करके अपने घर तक पहुंच और घर पहुंचने के पश्चात मन में एक ही विचार कर रहे थे कि इस ब्राह्मण के प्रति मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि जिसके कारण उसने मुझे मारा। हालांकि उनके जीवन में उन्होंने किसी के प्रति वाणी से या मन से भी कभी अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी मन में सोच रहे थे कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था। और उनको मालूम था कि ये ब्राह्मण उनके प्रति द्वेष करता है, मन में उनके ऐसा विचार नहीं है कि कितना द्वेषी है उसने मुझे मारा था, कि ये सोच रहे थे कि सबने क्या बिगाड़ा है उसका, ऐसा कौन सा अज्ञान है मैंने अपराध कर दिया कि वो बेचारे ने मुझे मारा, अन्यथा कोई ऐसे ही किसी को नहीं जाके मारा, ऐसे ही कोई मारेगा तो दुनिया पागल कहेगी, ये तो पंडित है ब्राह्मण है और ब्राह्मण ऐसा पागलपन कैसे करेगा। रात भर सोचते रहे, सो भी नहीं पाए। प्रातः काल में पहले उठ के उस ब्राह्मण के घर पर गए, दरवाजा नहीं खटखटाया और उसके अपने उसके नाम से बोला, ये भी तपा हुआ था रात भर, ये भी सो नहीं पाया हुआ था क्योंकि अभी तक उसके मन में उनके प्रति इतनी द्वेष भावना थी। दरवाजा खोल दिया, जैसे ही तुकाराम महाराज के सामने देखा तो और बरसने वाला था, लेकिन जैसे ही तुकाराम महाराज ने उसको देखा उसके चरणों में गिर गए, बोले हे ब्राह्मण हे विप्रवर माफ कर देना, अगर जाने अनजाने में मैंने कोई तुम्हारे प्रति अपराध किया, मैंने कोई ना कोई तो निश्चय अपराध किया इसलिए तुमने मुझे मारा, अन्यथा तुम क्यों मारते, तुम तो भले ब्राह्मण हो, शास्त्रों में तो आपको भूदेव कहा जाता है, इस धरती के आप इस धरती पर आप भगवान के प्रतिनिधि हो। अब तुकाराम महाराज का यह व्यवहार देखने के पश्चात वो बेचारे का हृदय पूरा पिघल और उल्टा हो उनके चरणों में गिर गया, बोला महाराज आप तो महान वैष्णव, यदि वैष्णव का सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो आप दिखा रहे, इतने सालों तक मैंने जो आपके प्रति अपराध किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, और उनके चरणों में गिर गया, तो ये रहता है वैष्णव का व्यवहार, यह है सहनशीलता। ऐसे अगर हम सहन रहेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले का हृदय परिवर्तन होगा। और रिसेंटली हमारे पास उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, क्या नहीं सहा उन्होंने अपने जीवन में, लेकिन प्रभुपाद थिंक इट वॉज इन कैलिफोर्निया कॉलेज ब्रीडिंग के लिए गए थे एक जगह पे, और वहां पे चतुर्वर्ण और चतुर आश्रम के बारे में बोलते हैं, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास से बताया जाता है। तो एक लड़का पद से उठा और बोला स्वामी जी विच क्लास डू यू बिलोंग, आप कौन से क्लास के हो, तो ब्रह्मा ने हाथ जोड़े और बहुत नम्रता से उसे कहा, ऐसा नहीं कि दिखा नहीं सकते बल्कि आपको आपके उनकी आग भरो गई थी, आंखों में पानी पानी आ गया था और हाथ जोड़ के कहा कि आई एम द फिफ्थ क्लास, आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल दिस फोर क्लासेस, इन्हीं चारों वर्णों और आश्रमों का मैं सेवक। ये भावना रहती है भगवान के, तो सोचो अगर ऐसे भक्त के प्रति हम कुछ अपराध करेंगे तो भगवान हमें क्षमा करेंगे। जैसे हम अभी तो कड़ी धूप है, कड़ी धूप में जब चलते हैं तो कई बार मस्तक हम खुला कर देते हैं, लेकिन कभी खुले पाप चलते हैं, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम अपने अपने पाँव को बचाए, इसलिए चप्पल वगैरह पहनते हैं। आप भगवान के प्रति अपराध करेंगे भगवान के भी बोलते ठीक है अनजान है माफ कर देते हैं, लेकिन उनके चरणों में आश्रित उनके भक्तों के प्रति अगर अपराध करते हैं ना भगवान कभी माफ नहीं करते, तुरंत उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु बताते हैं कि सकल वैष्णवेर सहित अभेद अधिकार जे कृष्ण भजे से चाय करिए वैष्णव देखिए देना नीचे मुंडा नीचा है मुंडा सही मुंडा पड़े गिरिया घर के रखूंगा। तो जो वैष्णव के प्रति आदर नहीं रखता है, उनका सम्मान नहीं करता है, जो उनके सामने आने के पश्चात अपना शीश नहीं झुकता है, तो आप लोग बताते हैं कि निश्चित रूप से वो सिर जाएगा कहां नरक। तो आइए अपने इस भक्तिमय जीवन में प्रगति करने के लिए हमारे जो महान आचार्यों ने हमें विधि दी है उसे गंभीरता से अपने जीवन में स्वीकार और भगवान के उन चरण कमलों को हम प्राप्त करें। कि उन चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक वस्तु है भगवान के भक्तों की कृपा, और वो तभी प्राप्त होगी जब हम उनके स्तंभ में आएंगे। तो इसीलिए साधु संघ जो है वो इस पंचविध भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं अपने आप को दीन समझने के लिए क्या स्मरण करता हूं। उन्होंने जो सारार्थ वर्षिणी नाम की एक टीका लिखी है श्रीमद् भागवतम के उसके 11वें स्कंध में बताते हैं कि सारे जीवात्माओं ने पृथ्वी की शरण ली है, पृथ्वी का आश्रय लिया है, और ये पृथ्वी धरती ये भगवान के चरण कमल का द्योतक है। यानी जाने अनजाने में हर एक जीवात्मा ने किसकी शरण ली है, भगवान के चरणों की। और मेरे भगवान इतने दयालु हैं कि वे जो भी उनके चरणों में आता है उसके अपने उसको अपने वक्ष पे धारण कर लेते हैं, जो भी उनके चरणों की सेवा में लग जाता है उसे वो अपने वक्ष पे स्थान देते हैं। तो क्या मैं ऐसे जीवात्मा के प्रति अपराध करूं, और कर भी दिया तो क्या मुझे भगवान उनका प्रेम दे पाएंगे। जो भगवान के प्रेमी जन है उनके प्रति अगर मैं अपराध करूंगा तो भगवत भक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, और यही सोचकर मैं अपने आप को इन अपराधों से बचा। आइए ऐसे महान आचार्यों के चरणों का अनुकरण करते हुए अपने इस भक्ति में जीवन में आगे बढ़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कोई किसी का प्रश्न या टीका टिप्पणी हो तो स्वागत। श्री प्रभुपाद।